ओम शांति, ओम शांति। सभी परमात्मा याद में खोए हुए हैं। सब आज सुबह भी आपने सुना राजयोग का सत्र आत्मा के बारे में, और अभी भी दीदी के द्वारा सुनेंगे। तो वैसे तो दीदी जी का परिचय तो परमात्मा ने इतना देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मान से बहुत ऊपर है। फिर भी दो लाइन में सुनाऊंगा। दीदी जी बहुत ही रात और दिन सेवाओं में बिजी रहते हैं। इनका जन्म स्थान गुजरात में कलोल में है। अपना घर को ही सूक्ष्म वतन बना के रखा है। पूरा घर 3-4 मंजिला है, पूरा वाइट, हर चीज वाइट। तो हम लोग अभी बीच में गए थे, इतना सुंदर सूक्ष्म वतन है। वहाँ जाने से ही पावरफुल वाइब्रेशन है। तो ये सारी दीदी जी की अवस्था के ऊपर है। तो इतनी अच्छी अवस्था परमात्मा की याद में रहते हैं, और गीतों के द्वारा से भी बाबा की बहुत सेवाएं करते हैं। और जहाँ कहीं भी शिवानी दीदी को जानते हैं, कौन कौन जानते हैं, जो शिव की वाणी जिसको बाप दादा कहते हैं, तो उनके साथ अनेक जगहों पे चक्कर लगाने जाते रहते हैं। और खास बात यह है कि दीदी जी के पहले ही इनका संगीत संध्या रहता है, तो पूरा ही इनके उनके साथ रसते रहते, इनकी भी अवस्था वैसी बनती जा रही है। और गुजरात में है और बचपन से ही ज्ञान में है दीदी जी, बचपन से ही ज्ञान में। इनका पूरा परिवार ज्ञान में है। आप देख रहे होंगे इनकी माता जी भी आपको, हम तो कई दिन लग गए इनको माता जी को कि दीदी जी है, पर इनकी माता जी पूरा, जब ये बाहर जाते तो इनका देख रेख घर का पूरा सेंटर का वो माता जी करते हैं। तो दीदी जी भी ही कई जगहों पे गीत संगीत संज्ञा के द्वारे बाबा का परिचय देते रहते हैं, और आए दिन कहीं कहीं प्रोग्राम होते रहते हैं। तो दीदी जी की वाणी में वो परमात्मा प्यार भरा हुआ है। आपने अभी मेडिटेशन किया, उसमें भी कितना सुंदर, इतना अच्छा वायुमंडल लग रहा था। दीदी जी बाल ब्रह्मचारिणी है डॉक्टर दीदी दामिनी दीदी जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक अनमोल रतन है। आपके अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया है। ऐसी प्यारी दीदी जी न कि आत्मा का डॉक्टर, मन और तन का भी डॉक्टर है। दोनों को समंजस करते हुए दोनों तरीके से हमें अभिज्ञान की प्रकाष्ठा समझाएंगे। तो ऐसी दीदी जी का हम सभी एक हाथ की ताली से वेलकम करेंगे। मैं दो लाइन दीदी जी के बारे में कहूंगा। फूलों की महक तो केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक नेक इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। ऐसी हमारी प्यारी दीदी जी, हम सभी अभी उनके मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति,
ओम शांति। आज सुबह आप सभी ने सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्म अनुभूति का सेशन लिया। सबने समझा मैं कौन हूं, समझा? आज तक क्या समझते थे, और आज यहां आकर के समझ में आया है कि जो समझते थे वो तो हम थे ही नहीं। और ये ब्यूटीफुल परिचय से, हमारे अपने परिचय से एक बहुत ही सुंदर यात्रा आज आरंभ हुई है। हमें विषय दिया गया है कि संबंधों को सुदृढ़, स्वस्थ या मधुर कैसे बनाएं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज हमें इस विषय पर चर्चा करनी क्यों पड़ रही है, क्योंकि भारत की संस्कृति तो इतनी श्रेष्ठ है। भारत की संस्कृति में हमारी जितनी भी कथाएं बताई गई हैं, चाहे श्री राम की हो चाहे श्री कृष्ण की हो, उसमें संबंधों की मधुरता कुट कुट के भरी है। और फिर भी आज वर्तमान समय हमें अपने ही संबंधों में कुछ कुछ ऊंच नीच परेशानी नजर आ रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे संबंधों में गड़बड़ कहाँ शुरू होती है? ऐसा क्या होता है जो हमारी रिलेशनशिप में गांठे पड़ने शुरू होती है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, बताएंगे? एक्सपेक्टेशंस, ईगो और हाँ जी, विचारों का न मिलना और अच्छा झुकना नहीं आता। अच्छा, किसको, उनको या मुझे, उनको या हमें? अच्छा हमें, आप बहुत स्वीट हो, सारा चीज अपने पर ले रहे हो, तो फिर परिवर्तन बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि अपनी जिम्मेवारी ले रहे ना। और क्या कारण हो सकता है? लालच। अच्छा, और लोभ। सोचो, आप अपने रिश्तों को सोचो कि इस रिश्ते में कोई तो ऐसा रिश्ता होगा हर एक के जीवन में जिसमें कुछ तो गड़बड़ है या गड़बड़ो। हाँ जी, अच्छा, सामने वाले की हमसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, हम पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो रिश्ते खराब होते हैं। और क्या हो सकता है? सॉरी, हाँ मैं सही हूं, बाकी सब गलत। हाँ, अभिमान, ईगो। उसको फिर हम ठीक करते हैं, कोई रिश्ता खराब होता है तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो कैसे ठीक करते हैं उसे? बातचीत करते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, दूरी बन जाती है, फिर हम प्रयास नहीं करते। कोशिश तो करते हो ना रिश्ते को ठीक करने की, तो वो कोशिश में आप क्या करते हो, क्या क्या करते हो बताओ? रिश्ते ठीक करते हो ना, क्या करते हो? सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे? अच्छा, ओके। और अपनी गलती मान लेते हैं, पर गलती नहीं है फिर भी मान लेते हैं, वाह जी वाह। और क्या करते हैं? प्रार्थना भगवान से कि भगवान ये रिश्ता ठीक कर देना, भगवान कर देगा, गलती हम करें और वो ठीक करेगा। हाँ, डिस्कसिंग विथ ईच अदर, उनसे डिस्कस करते हो या उनको छोड़ के सारे और लोगों के साथ डिस्कस करते हो? संबंधों में आजकल जो ज्यादा उलझते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम रोल कॉन्शियस होकर के आज जीवन जी रहे हैं, जबकि हमें जीवन जीना चाहिए सोल कॉन्शियस होकर के। जब मुझे ये कॉन्शियसनेस आती है कि मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, तो रोल हमेशा एक्सपेक्टेशंस को पैदा करता है। जब आप किसी रोल में होते हो ना, तो वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशंस आती हैं। लेकिन जब आप सोल कॉन्शियस हो, जो आप सुबह का सेशन आपने लिया कि हर आत्मा अपनी अपनी की यात्रा पर है, हर आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना किरदार निभाने आई है। जिसके साथ मेरा कोई कार्मिक है, वो कोई मेरा माँ बनके, कोई मेरा बच्चा बनकर के, कोई मेरा कुछ बनकर के, एक परिवार में हम सब इकट्ठे होते हैं। पर सब एक यात्रा पर है, हर एक की जर्नी अलग अलग है, हर एक के संस्कार अलग अलग है। आपके ही दो बच्चे होंगे, दोनों के एक जैसे संस्कार तो नहीं है ना, है नहीं है। पूर्व जन्म में बने हुए संस्कार लेकर के वो आत्मा आई है, तो हर एक के स्वभाव संस्कार अलग है। लेकिन जब मेजॉरिटी रिश्तों में हम चाहते हैं वैसा वो नहीं करते, या हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो व्यवहार नहीं करते, शुरुआत वहां से होती है कि आपने ऐसा क्यों किया, हमने आपको ऐसा कहा था, या हम चाहते थे आप ऐसा करें पर आपने ऐसा नहीं किया, तो हमें लगता है कि वो गलत है, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन उनकी जगह वो राइट होते हैं, उनके पास वो कर्म करने का कोई ना कोई कारण होता है, एक्सक्यूज होता है। और ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे संबंधों में गांठें पड़ना शुरू होती है, क्योंकि हम उनके व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है, वहां वो संबंध में धीरे धीरे क्या आता जाता है, डिस्टेंस आता जाता है। एक्सेप्टेंस बहुत एक छोटी सी बात से समझते हैं। आप घर में कुछ काम कर रहे हो और आपका छोटा सा बच्चा आपको आकर के अपना ड्राइंग दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मी मम्मी मैंने ये ड्राइंग किया आप देखो, और उस समय मम्मी बहुत बिजी है काम में और उसको कुछ भी बोल करके इग्नोर कर रही है, थोड़ा सा डांट दिया, अरे इतने इंपॉर्टेंट काम कर रही हो आपको पता नहीं चलता, अभी नहीं आना चाहिए। बार बार या कभी कोई अपना बच्चा अपनी कोई बात लेकर के आता है और हम उसको ये कह दें नहीं ये गलत है, हम उनको सुने बिना, घर में भी कभी कोई ऐसा माहौल होता है कि एक दूसरे से कुछ कुछ डिस्कस करते हैं और उसमें हम उनकी बात को सुने बिना ही उनको रिएक्ट करके कुछ न कुछ सुना देते हैं कि आपको इसमें समझ नहीं आता आप कुछ मत बोलो, करते हैं ऐसा कभी कभी। तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। तो जहां एक्सेप्टेंस नहीं होता वहां रिस्पेक्ट नहीं होता, वहां रिस्पेक्ट नहीं होता तो जहां रिस्पेक्ट नहीं वहां सामने वाली आत्मा रहेगी अपने साथ, आप वहीं रहेंगे ना जहां आपका सम्मान है, जहां आपको सम्मानित फील नहीं होता वहां आप क्यों रहेंगे। तो आज मेजॉरिटी संबंधों के अंदर क्योंकि एक दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी गलत बातों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है आप जो हैं, आप जैसे हैं, हम आपको समझते हैं, बाकी की बात बाद में, परंतु हम तुरंत ही उन आत्माओं के लिए जो हमारे परिवार या हमारे संबंध, चाहे वो हमारे कर्म क्षेत्र में है, चाहे वो हमारी फैमिली है, परंतु जैसे ही हम उनकी बातों को रिजेक्ट करते हैं हमारे बीच एक डिस्टेंस आना शुरू होता है। तो सबसे सहज बात ये होती है कि कभी भी कोई हमारे परिवार से कर्म क्षेत्र में हमसे कुछ शेयर करता है, कोई बात बताता है, तो एक झटके में उसको दूर करना, ईगो अहंकार जो बोला ना कि हमसे बड़ा कौन, हमसे ज्यादा ज्ञानी कौन, हम आपसे ज्यादा अनुभवी है, हमें आपसे ज्यादा पता है हमें क्या करना है, तो जब ये सारी चीजें आती हैं तो एक डिस्टेंस आना शुरू होता है, ये शुरुआत होती है। उस समय ज्यादा पता नहीं चलता पर धीरे 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 वो डिस्टेंस इतना बढ़ता जाता है कि फिर एक दूसरे से वो बात शेयर करना भी बंद करते हैं। पर मानव का सहज स्वभाव है कि यहां शेयर नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, कहीं और करेंगे जहां उनको लगेगा कि जो मेरा सुन रहा है। तो आजकल के बच्चे, मेजॉरिटी यंगस्टर्स, क्यों फेसबुक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बना रहे हैं जिनको वो जानते तक नहीं है, जिनकी फैमिली का उनको पता नहीं है, जिनके साथ वो ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, वो कौन है, कहां से है, कैसे हैं, रियल है या फेक है, फिर भी उनके साथ दोस्ती मित्रता करना और अपने जीवन की वो सारी बातें शेयर करते हैं जो अपने मां बाप को भी नहीं कहते हैं। क्यों बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार की ओर से वो एक्सेप्टेंस, वो रिस्पेक्ट की भावना कहीं ना कहीं उसको मिसिंग लग रही है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जहां भी आपको कोई स्वीकार करेगा ना, आप तुरंत उसके साथ, तो संबंधों के अंदर हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है। मेजॉरिटी आज का जो समय चल रहा है, कलयुग है ना, या घोर कलयुग है? घोर कलयुग है। हम चारों ओर देख रहे हैं कैसी परिस्थितियां हैं, हर एक की स्वभाव संस्कार भी बहुत तामसिकता की ओर जा रहे हैं, संसार की हालत भी बहुत कमजोर है, वातावरण में भी डर, भय, चिंता, दर्द, दुख बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर मुझे अपने परिवार को ठीक रखना, मेरे अपने सारे संबंधों को ठीक रखना है, तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा। तो तीन संबंध है हमारे। मुझ आत्मा का सबसे पहला रिलेशनशिप है इस शरीर के साथ, सबसे पहला संबंध, क्योंकि मैं आत्मा सुबह रात दिवस रात इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूं, उठती हूं, खाती हूं, पीती हूं, बैठती हूं, हर चीज, मन में जो भावना भी उत्पन्न हो रही है, इस इंस्ट्रूमेंट को साथ लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहला संबंध हमारा इस शरीर के साथ है। दूसरा, मुझ आत्मा का संबंध मेरे आसपास जो रहते हैं उनके साथ है। और तीसरा जो संबंध है, जो सदा का है, हम कहीं भी रहे, वो सदा का रिलेशनशिप है, वो है परमात्मा के साथ हमारा संबंध। इस देह के साथ का हमारा संबंध और देहधारियों का संबंध ठीक हो सकता है अगर एक संबंध परफेक्ट हो जाए। कौन सा? परमात्मा के साथ का। अगर वो रिलेशन, वो रिश्ता अगर ठीक हो गया, तो ये रिश्ते, यहां के रिश्ते, ये शरीर सब परफेक्ट हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारा वो कनेक्शन भी टूटा हुआ है, क्योंकि उसे जानते ही नहीं है। खैर, परमात्मा के परिचय का ब्यूटीफुल आपको सेशन मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा वो कौन है, वो कैसा है, कैसे उनके साथ संबंध स्थापित करना है। परंतु जैसे ही हम सुप्रीम कनेक्शन को ठीक करते हैं, बाकी सारे रिश्ते अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन और चित्त पर उनकी शक्ति का प्रभाव पड़ता है। और उनकी शक्ति का प्रभाव पड़ना मतलब मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आना। तो आपकी जो ये यात्रा है, जो यहां से शुरू हुई है, वो अपने परिवर्तन की यात्रा है। और हर एक घर में, हर रिश्ते के अंदर सामने दोनों को ठीक होने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी रिश्ते में सिर्फ एक जना शक्तिशाली हो, इनफ है। एक ही चाहिए जो शक्तिशाली हो। कोविड के पीरियड पर तीन नियम थे। एक तो नियम था मास्क लगा के घूमो, दूसरा नियम था डिस्टेंस रखो, और तीसरा नियम था बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करो, तो आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। वो बाहर की बात है, आज दुनिया में भी बहुत सारे इन्फेक्शन है, रिलेशनशिप्स में भी इन्फेक्शन है, घर में, संबंधों में, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ये सारा इन्फेक्शन है, स्वभाव और संस्कार की इन्फेक्शन है। लेकिन मैं अगर अपनी टेक केयर करूंगी, तो मैं उनके इन्फेक्शन से प्रभावित नहीं होंगी, मुझे उनके इन्फेक्शन का दाग नहीं लगेगा, वो इन्फेक्शन मुझे नहीं लगेगा, और मुझे नहीं लगेगा तो मैं शक्तिशाली हूं, तो मैं वो संबंध को ठीक कर पाऊंगी। लेकिन होता क्या है, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने चीट किया, उन्होंने गुस्सा किया, तो मैंने भी सामने गुस्सा किया, तो वो बीमार हुए तो मैं भी, गुस्सा बीमारी है ना, गुस्सा बीमारी है कि नहीं है? कौन कौन समझता है गुस्सा तो नॉर्मल है, गुस्सा तो आएगा अगर लोग हमारे हिसाब से नहीं काम करेंगे तो। हमने कहा इतना करो, इतना नहीं करा तो गुस्सा तो आएगा, बच्चा पढ़ने नहीं बैठेगा तो गुस्सा तो आएगा, नॉर्मल है। किस किस को लगता है ये? नहीं लगता? अच्छा, गुस्सा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो फिर क्यों करते हैं हम, जो चीज एबनॉर्मल है वो करनी चाहिए, तो क्यों करते हैं? हाँ आ जाता है, आ जाता है या लाया जाता है? लाया जाता है। आप ऑफिस में काम करते हो और सपोज आपके बॉस ने आपको बहुत सारा काम दे दिया, आज आपको घूमने जाना था, जल्दी छुट्टी लेनी थी, वहां गुस्सा करेंगे आप बॉस के सामने? वहां नहीं करेंगे, क्योंकि वहां नहीं कर सकते, नौकरी चली जाएगी। लेकिन घर आकर अगर खाने में थोड़ा सा भी नमक कम हुआ तो, क्योंकि वहां तो कर सकते हैं, वहां अधिकार है, वहां तो गुस्सा हम अपनी चॉइस से करते हैं, हम अपनी चॉइस से करते हैं। और गुस्सा तो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल उसे कहा जाता है जहां मुझे कंफर्टेबल फील हो। तो गुस्सा करते समय कंफर्टेबल लगता है किसी को? तो जो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है उसको एबनॉर्मल कहते हैं। जैसे शरीर के अंदर कोई भी खामी आती है, विटामिन की डेफिशिएंसी आती है, तो हमें थोड़ा सा अनइजी फील होता है, वीकनेस लगेगा विटामिन की कमी की वजह से, चक्कर आएगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही आत्मा के अंदर शांति की कमी आती है तो गुस्से नाम की बीमारी पैदा होती है, गुस्से नाम की बीमारी पैदा होती है। तो कोई गुस्सा कर रहा है मतलब वो क्या है, वो क्या है? तो घर में अगर कोई गुस्सा करता है आपके सामने और हम भी फिर गुस्सा करें तो दोनों बीमार, दोनों बीमार, तो कौन किसकी सेवा करेगा, कौन किसको शक्ति देगा? फिर वो रिश्ता कैसा होता जाएगा? वो रिश्ता और ही ज्यादा उलझता जाता है, डिप्लीट होता जाता है, क्योंकि कोई एक भी ऐसा नहीं है जो शक्ति से उस रिश्ते को ठीक करे। हमें लगता है सामने वाले ने गुस्सा किया, हम भी गुस्सा करके उसको चुप कराए। गुस्सा शक्ति नहीं है, और एक नेगेटिव एनर्जी को एक नेगेटिविटी से तो खत्म किया नहीं जा सकता ना। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो मान नहीं रहा है, मतलब वो गलत कर रहा है, तो उसको गुस्से से समझाना, गुस्से से ठीक करना, हमें लगता है हमने गुस्सा किया और वो चुपचाप होकर के पढ़ने बैठ गया तो सुधर गया। आपको लगता है ये सही तरीका है? गुस्से से कोई ठीक हो सकता है? वो टेम्पररी बैठेगा, लेकिन उसका यहां का जो है ना वो तो वैसे ही चल रहा है, ये परिवर्तन नहीं हुआ है। कहने का भाव ये है कि हर रिलेशनशिप के अंदर शक्ति से काम ले, शक्ति के विपरीत जो भी चीजें हैं, गुस्सा मतलब सामने वाले के व्यवहार से प्रभावित होकर के अगर हम व्यवहार करेंगे तो वो रिश्ता और ही उलझता जाएगा और ही ज्यादा। और आजकल संबंधों में प्यार से ज्यादा व्यापार शुरू हो गया है कि उन्होंने इतना किया तो मैं इतना करूंगी, अगर वो मेरे साथ ऐसे रहेंगे तो मैं उनके साथ ऐसे रहूंगी, वो प्यार से बात करे तो मैं प्यार से बात करूं। परंतु अगर उनके व्यवहार को देख करके हम व्यवहार करेंगे तो इन्फेक्शंस लगने के चांसेस ज्यादा है। परमात्मा कहते हैं उनके संस्कारों के साथ इंटेंगल नहीं होना। हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार है, तो उनके संस्कारों के साथ इंटेंगल हुए बिना मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और वो दूरी बनाना, इसका अर्थ होता है जो भी सामने व्यवहार कर रहे हैं उनका प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर ना पड़े, उसके लिए अपनी टेक केयर करना। बीच बीच में हाथ सैनिटाइज करते थे ना, उस समय हर 10 मिनट में कुछ भी टच कर लिया तो हम तुरंत सैनिटाइज करते थे, क्यों? कहीं पे कोई जर्म्स लग गया कोविड का तो हमें लग जाएगा। तो पूरे दिन में हम जो अपने संबंधों में व्यवहार में आते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारा डिसरिस्पेक्ट किया, तो ये छोटी छोटी बातें, पर हम क्या करते हैं, हम उन बातों से प्रभावित होकर उन बातों को पकड़ के रखते हैं। अगर हम उन बातों को पकड़ के रखेंगे तो वो दाग बन करके आत्मा पे लगते जाएंगे, लगते जाएंगे, रखते जाएंगे। जैसे बीच बीच में सैनिटाइज करना जरूरी है, वैसे भी रिश्तों में अगर कोई बात हो जाती है तो उसको तुरंत ठीक करना उतना ही जरूरी है। लेकिन हम उसके विपरीत क्या बोलते हैं, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात तो मैं कभी भूलूंगी नहीं, आई विल सी यू इन कोर्ट, कैसे कैसे शब्द, तो रिश्ते कैसे ठीक हो सकते हैं? अच्छा एक बात बताए, रिश्ता ठीक करने के लिए दोनों को ठीक होना जरूरी है या एक का ठीक होने से भी रिश्ता ठीक हो सकता है? पक्का पक्का? किस किस को लगता है कि दोनों की तरफ से होना चाहिए ना? हम तो उनको मनाए, हम उनको सब कहें, पर वो ना करे तो वो रिश्ता कैसे ठीक होगा? किसको लगता है दोनों की आवश्यकता है रिश्ता ठीक करने के लिए? अच्छा, मतलब मैं भी सॉरी करूं, वो भी सॉरी करे, फिर गारंटी है वो सॉरी करेंगे? आपके सॉरी करने के बाद भी वो सॉरी करेंगे, गारंटी है? नहीं है। उनको समझाना इजी है या अपने मन को समझाना ज्यादा इजी है? आजकल तो शादी के 40 बरस बीतने के बाद भी एक दूसरे को क्या कहते हैं, आज तक मैं आपको नहीं समझ पाई, कहते हैं एक दूसरे को। हमें समझना भी नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को समझाना है। लाइफ तब इजी हो जाती है जब हमें इतनी यहां क्लैरिटी हो कि क्या सत्य कर्म है, सत्य क्या है, उस पे कर्म करना। हमारे जितने भी धर्म शास्त्र बने हैं, चाहे वो गीता है, चाहे भगवद गीता है, चाहे वो कुरान है, चाहे बाइबल है, हर एक के अंदर एक ही चीज बताई गई है, आप अपनी तरफ से अपना किरदार श्रेष्ठ निभाइए, आपका कोई रिश्ता खराब नहीं हो सकता। परंतु जब हम ऐसे खड़े होते हैं, मतलब रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट ऐसे, रिश्ता मांगने के लिए नहीं होता कभी, रिश्ता देने के लिए होता है। आजकल के रिश्ते क्यों जल्दी टूटते जा रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले किसी से मिलना हुआ तो वो बता रहे थे कि हम डिवोर्स ले रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, बहुत यंग थे, मैंने कहा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई? कि बस मुझे उनसे वो मिल नहीं रहा जो मैं चाहती थी, आई एम नॉट कंफर्टेबल। मतलब हम चाहने के लिए अगर किसी रिश्ते में जाएंगे तो वो रिश्ता कभी कभी नहीं टिक सकता है। रिश्ता तो देने के लिए होता है। और क्योंकि आज इस संसार में जो भी साइंस ने हमें साधन दिए हैं, उस साधनों की अधीनता ने हमें अपने रिश्तों से दूर करके डिजिटल टच में इतना ले गए हैं कि हम संबंध ह्यूमन टच भूल गए हैं। एक समय था कि पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा बैठ करके भोजन करता था, बैठ करके घूमने जाते थे, तो ट्रेन में भी जैसे खेलते, गीत गाते, ऐसे मिल के जाते थे। आज तो एक ही कमरे में चार लोग बैठे हैं पर चारों के हाथ में मोबाइल है। दूसरे कमरे से दूसरे कमरे में मैसेज होता है कि खाना भेजो। आज ये समय आ गया है, ये हमारा कल्चर नहीं है। और जहां ह्यूमन टच धीरे धीरे खत्म होता जाता है, क्यों? क्योंकि डिजिटल, अब बाहर की दुनिया से जुड़ रहे हैं लेकिन अंदर घर में किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अभी अभी कुछ समय पहले जैसे आया किसी देश की बात है कि वहां पर एआई के साथ शादी शुरू कर दी है, मतलब लीगली कि आप एआई से शादी कर सकते हैं, मनुष्य से शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो समझते नहीं है, तो एआई तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर करता है, आपकी हर भावना, आपकी हर बात का जवाब देता है। तो आप सिर्फ ये समझिए कि हर आत्मा को क्या चाहिए, क्या क्यों एआई से शादी कर रहे हैं वो, कि वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य से शादी नहीं करनी पर रोबोट से शादी कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ये, बहुत बड़ी विडंबना है। एक बात हमें समझनी होगी कि हर आत्मा एक बहुत बड़ी यात्रा करके हमारे पास आई है। हम जिनके साथ जुड़े हैं, जितने भी हमारे संबंध है, वो सीधा परमधाम से नीचे नहीं आया है। इस संसार में बहुत सारे जन्म, बहुत सारे कॉस्ट्यूम बदल के, बहुत सारे संस्कार रिकॉर्ड करके, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर के वो मेरे पास आया है। और हम उनकी छोटी छोटी बातों को, कोई उनकी गलतियों को देख करके जजमेंटल बन जाते हैं और फिर रिश्ता खराब कर देते हैं। और वो कौन है, वो कौन से रिश्ते हैं जिनके साथ हम बोलचाल बंद कर देते हैं? वो वही लोग हैं जिनको अगर थोड़ा भी कुछ हो गया, उनको बीमार हो गया, उनके साथ कुछ गलत हो गया, तो उनको बचाने के लिए हम अपने सारे गहने भी गिरवी रख देंगे ये वो लोग हैं, लेकिन हम अपने अभिमान को नीचा नहीं कर सकते अगर कोई बात हो जाती है, हम बोलचाल बंद कर देते हैं उनसे। रिश्ता इम्पोर्टेंट है या अहंकार इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ज़्यादा? रिश्ता इम्पोर्टेंट है ना, तो अहंकार को हावी मत होने दीजिए, अहंकार को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि वो वही लोग हैं जिनके लिए हम एक समय पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें लगता है कि बोलचाल हमने बंद कर दिया, कुछ ऊपर नीचे हो गई तो सब शांत हो गया है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता है, रिश्ता और उलझता जाता है, क्योंकि यहां से बंद है यार, यहां तो युद्ध चल रहा है, यहां से तो युद्ध चल रहा होता है, ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा क्यों किया। और ये जो हम सोचते रहते ना उनके बारे में कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो इनके लिए कितना अच्छा किया पर उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, फिर मन क्या है ना, घोड़ा है, वहां रुकता नहीं है। एक दाग लगा, उन्होंने गलत किया, फिर कहते मैंने अच्छा किया फिर भी उन्होंने ऐसा किया, दूसरा दाग लगा, फिर हम सोचते वो नहीं, सारे के सारे मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, तीसरा दाग लगा, फिर कहते पूरी दुनिया ही ऐसी है, चौथा दाग लगा, फिर कहते मेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मैं तो किसी काम की हुई नहीं। ऐसे यहां पे हम दाग दाग दाग, उन्होंने एक ही चीज की थी, उन्होंने एक ही छोटी सी गलती की या जो भी एक चीज करके या कुछ बोल के चले गए, पर उनकी वो एक एक्शन के सामने मैंने जो 10 विचार यहां पर क्रिएट किए, 10 थॉट्स जो मैंने क्रिएट किए उनके और मेरे लिए या इस रिश्ते के लिए, उससे मुझे दर्द होता है। रिलेशनशिप्स के अंदर मेजॉरिटी हम कहते हैं इनकी वजह से मुझे दुख हुआ, इन्होंने मुझे दुख दिया, इन्होंने ऐसा किया ना इसलिए मुझे रोना आया। आपको जब भी कोई गिफ्ट देता है तो आप खुश होते हैं? अगर कोई मुझे गिफ्ट देगा तो मैं खुश होंगी, अगर मुझे बर्थडे पर गिफ्ट नहीं मिली तो मैं दुखी। मतलब हमारे इमोशंस का, हमारी भावनाओं का आधार हमने बाहर की चीजों को रखा है। तो जब कोई भी रिश्ता एक्सपेक्टेशंस या लेने की भावना से होता, अगर वो देना बंद करेगा तो फिर वो रिश्ता तो वहीं पे अटक गया ना, क्योंकि उन्होंने। और ये बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के समय में कि वो आपको इतना दे पाएगा। आप उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो सिर्फ भगवान दे सकता है। तो सबसे सहज रास्ता तो ये है कि उसके साथ रिश्ता जोड़ के फिर यहां के रिश्तों को निभाएं तो ब्यूटीफुल हो जाएंगे सारे रिश्ते, क्योंकि हर आत्मा रूपी बैटरी आज वर्तमान समय में डिस्चार्ज चल रही है और उनके सामने हम ऐसे खड़े रहे कि आप हमें प्यार दीजिए। वो खुद प्यार के भूखे हैं, वो कैसे हमें प्यार दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें एक ऐसा शक्ति स्तंभ, हमें एक ऐसा पावरफुल किरदार अपना प्ले करना पड़ेगा कि मेरे घर के सारी आत्माओं को मैं शक्ति दूँ। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो बार बार फ्लक्चुएट होता है, वो हमारे साथ बार बार चीट कर रहे हैं, वो बार बार हमारे पर गुस्सा कर रहे हैं, हम शिकायत होती है उनसे कि ये बार बार ऐसा कर रहे हैं जबकि हम उनके साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, इसका अर्थ वो बहुत ज्यादा दुखी है अंदर से। क्योंकि परमात्मा कहते हैं आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। तो सामने वाला अगर हमें धोखा दे रहा है, सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है, इसका अर्थ उसके पास वही चीज है, उसके कटोरे में अशांति है तो वो मुझे वही देगा, उसके कटोरे में भय है, उसके कटोरे में इनसिक्योरिटी है तो वो ईर्ष्या ही देगा, ईर्ष्या का स्वभाव संस्कार यूज करेगा, उसके अंदर वो है ही नहीं, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट है। और हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे हिसाब से वो हो नहीं सकता है। तो रिलेशनशिप हमेशा एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट से चलती है। जहां पर ये दो चीजें नहीं होते वो संबंध लंबे समय तक नहीं चल सकता। जहां तक वो दे पाएगा वहां तक हमें अच्छा लगेगा, फिर जैसे उसने देना बंद किया तो हमें वो बुरा लगने लगता है। और हमारा एक संस्कार बन गया है लंबे समय से, हमें कोई भी चीज लंबे टाइम तक अच्छी नहीं लगती, चेंज चाहिए चाहिए, मोबाइल खरीदा तो एक दो साल यूज करेंगे, फिर हमें वो मोबाइल भी चेंज चाहिए, पुराना सोफा दो चार साल पांच साल फिर बदलना होता है, पर्दे बहुत देख देख के बोर हो गए, अभी वो पर्दे चेंज करो, कपड़े अरे कब से एक साल से दो साल से यही कपड़े पहन रहे, बोर हो गए अब चेंज करो। चीजों वस्तुओं तक तो ठीक था, अब तो इंसानों से भी बोर हो जाते हैं, तो वाइफ बदली हो सकती है, हस्बैंड बदली हो सकता है, आजकल तो करने लगे हैं क्योंकि बोर हो गए हैं। बोर हम किसी चीज से तभी होते हैं जब खुद संतुष्ट भरपूर नहीं है, तब हम बाहर से खाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद भरपूर होता है वो बाहर से ऐसे लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर कोई रिश्ता ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का बहुत सहज तरीका है देना, देना एक्सपेक्ट किए बिना सिर्फ देना। और परमात्मा कहते हैं देने में ही लेना समाया हुआ है, कहते ना वो कर्म की गति में भी बताते हैं, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। अब हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे साथ ऐसे चलें, पर हम उनको नहीं दे रहे हैं वो चीज, तो वो ऐसे नहीं हो सकता। हर संबंध में एक्सेप्टेंस, एआई का जमाना है ना, तो एक है एक्सेप्ट करो उनको, ए फॉर एक्सेप्ट करना, और आई फॉर उनके गलत स्वभाव संस्कार को इग्नोर करना। हम किसी आत्मा से दुश्मनी या हम किसी आत्मा से नफरत नहीं कर सकते, उनकी गलतियों से हम, उनकी बुराइयों से हमें तकलीफ है, हमें उस आत्मा से तकलीफ नहीं है। हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं उनके व्यवहार को देख करके, उनके व्यवहार और उनकी एक्शन को देख करके हम संबंध नहीं बना सकते हैं। मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस रिलेशनशिप में कैसे चलूं। जैसे बताया कि आजकल के संबंध में लेन देन से चल रहे हैं, परमात्मा कहते हैं कि आप उनको प्यार दें, आप उनको खुशी दें, आप उनको शक्ति दें, देने में लेना है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर एक दुकान के आगे कोई रिक्शा से उतर के कोई चीज वस्तु ले रहा है, खरीद रहा है, तो खरीदते समय दुकानदार है वो देखेगा कि ये तो रिक्शा से उतरा है ना, तो वो चीज 500 रुपए में दे देगा कि ये 500 की है। पर वही चीज लेने अगर कोई मर्सिडीज से उतरेगा तो उससे 1000 रुपया लेगा। तो इंसान को देख करके भाव को बदला, भाव चेंज किया ना, कि ये ऐसा था तो उससे इतने में लिया। ये अगर इंसान को देखकर भाव बदला तो क्या वो ट्रस्टवर्दी दुकानदार है? नहीं। तो उस दुकान से आप कुछ भी माल लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। पर मॉल में जाकर खरीदना पसंद करोगे, क्यों? क्योंकि वहां पर फिक्स रेट होता है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो। वैसे आप अगर रिलेशनशिप में अगर ये प्यार से बात कर रहा है तो हम प्यार से बात करेंगे। उनके भाव को देखकर अपने भाव को बदलना ये ट्रस्टवर्दी व्यक्तित्व की निशानी नहीं होती है। फिर वैसे व्यक्तित्व के ऊपर कोई भरोसा भी क्यों करेगा? तो अच्छे व्यापारी भी हम नहीं बन पाए फिर तो इस संसार में आकर के। तो संबंधों की मधुरता, उसके लिए एक और बात परमात्मा हमें सिखाते हैं कि किसी भी संबंध में आज वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखें, क्योंकि हर आत्मा की एक यात्रा जो है उस यात्रा को हम नहीं जानते हैं कि वो किस किस परिस्थिति से निकल के आया है। हमें नहीं पता है कि उनकी पिछली लाइफ स्टोरी में क्या उनके साथ हुआ है। हमारे सामने कोई ऐसा हमारे परिवार में व्यक्ति हैं जिसका एक संस्कार है कि छोटी छोटी बातों में वो भयभीत हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेता है। तो हम कहते हैं इतनी सी बात में क्या डरना, इतनी सी बात में क्या गुस्सा करना, इतनी सी बात में क्यों आप भयभीत हो जाते हैं? परंतु हमें नहीं पता है कि वो आत्मा क्यों इतनी छोटी सी बात से, क्योंकि कुछ न कुछ उस आत्मा के साथ ऐसी परिस्थिति कभी न कभी हुई होगी जिसकी वजह से उसके अंदर यहां रिकॉर्ड हो चुका है उसका भय। तो संस्कार अलग हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है, अलग है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हरे जो है जैसे है वैसे एक्सेप्ट करके चले? क्योंकि जजमेंटल होने से कई बार हम अच्छे अच्छे रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। आप रास्ते से गुजर रहे हैं और आगे एक गाड़ी चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, बहुत धीरे धीरे, आपको बहुत जल्दी जाना है, पर वो धीरे धीरे जा रही, आप हॉर्न बजा रहे हैं, आप कांच नीचे करके उनको बोल रहे हैं, अरे जल्दी जाओ, जल्दी आगे जाओ, वो जा नहीं रहा। फिर हमारी पेशेंस खत्म हो जाती है तो हम उतर करके उसको डांटने के लिए जाते, ऐसा करते हैं हम लोग। और जैसे ही आप आगे जाएं और आप देखें कि उस गाड़ी के पीछे तो हैंडीकैप का स्टिकर लगा हुआ है, फिर आप उनको डांटेंगे? वो देखकर फिर आप उनको डांटेंगे? क्या सोचेंगे, बेचारा हैंडीकैप है इसलिए गाड़ी धीरे से चला रहा है? आप वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। ऐसे ही इस सृष्टि पर हर आत्मा हैंडीकैप हो गई है, कुछ न कुछ परिस्थिति से गुजर रही है, हमें नहीं पता। और लोगों के यहां माथे पर कोई स्टिकर सिर्फ नहीं लगा हुआ है, वहां तो स्टिकर देखकर हम रुक गए, यहां पे हम किसी के चेहरे पर वो स्टिकर देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम जजमेंटल होकर के उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, उनसे गुस्सा करने लगते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। वो जैसा भी व्यवहार करे, वो कुछ भी करे, मुझे अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्यार, खुशी, शक्ति देनी है। ये हमें अपने जीवन का एक नियम बना लेना है। और कोई भी चीज एक्सट्रीम लेवल कहां तक कोई कुछ कर सकता है? आप बाहर से कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। जैसे वो बहन जी, दो तीन लोगों ने हाथ उठाया था कि दोनों की गलती होती है, दोनों से वो रिश्ता चलता है। सामने गुस्सा किया, मुझे गुस्सा आया, आप वहां से बैठे बैठे कुछ भी मेरे लिए कर सकते हैं। आप मेरे साथ झूठ बोल सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, आप सबके सामने मेरा अपमान कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जोर जोर से बोल सकते हैं, लेकिन आप मेरे मन में आकर तो मेरे मन की जो साइकोलॉजी उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। मेरे विचार पैदा करने वाला कौन है? वो मैं खुद हूं ना। उसका जिम्मेवार कौन है? मैं खुद हूं। तो आपने कोई एक चीज की, उसके सामने फिर मैं इतना कुछ सोच लेती हूं और वो सोच से हमारा रिलेशनशिप और उलझता जाता है। हमारी संस्कृति का ये स्लोगन है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। हमारी सृष्टि या ना हमारी परिवार, हमारी जो रिलेशन है वो हमारी सृष्टि है। हम अपने ही संबंधों के बारे में, हम उनकी एक्शन को देखकर जो संकल्प क्रिएट करते हैं और उसके जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वो हमारे संबंध बनाते हैं। हम यहां से बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन यहां उनके बारे में कुछ अलग सोच रहे होते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करें वो रिश्ता अच्छा बने, कैसे हो सकता है? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप किसी के पास गए, वो आपसे बहुत मीठी वाणी में बात कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है बोल तो मीठा रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और है? ऐसा एहसास हुआ है कभी? है ना, होता है ना, क्योंकि वाइब्रेशंस पहले पहुंचते हैं, वाणी से भी पहले पहुंचते हैं। सपोज आप, संडे का दिन है, आपने डिसाइड किया था शाम 6 बजे हम घूमने जाएंगे कहीं, पूरा परिवार, छुट्टी का दिन है, सब तैयार हो गए हैं, 6:05 बाकी है और आपकी कोई फैमिली के कोई रिलेटिव्स आपके घर आपको मिलने आ गए, तो वो प्लान तो चौपट, वो प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो आपसे मिलने आए। अच्छा, वो जब आते हैं तो हम प्यार से कहेंगे, आइए आइए, बहुत टाइम के बाद आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई, प्लीज पधारिए, पर अंदर कहां आ गए, आज तो हमें जाना था, आज एक ही दिन तो मिला था छुट्टी, तो बोल कुछ और रहे हैं, उनके लिए सोच कुछ और रहे हैं, और फिर हम सोचे कि वो रिश्ता अच्छा रहे, नहीं हो सकता, क्योंकि रिश्ते सोच से बनते हैं, इससे नहीं बनते। यहां से रिश्ते बनते हैं। मैं उस आत्मा के बारे में जो भी सोचूंगी वो हमारा रिश्ता बनाता है। अब आप सोचिए, आपके जो भी रिश्ते गड़बड़ है ना, आप उनके साथ कितना भी प्यार से मीठी वाणी में बात कर रहे हैं, लेकिन आपके संकल्प में उनके लिए दुर्भाव या द्वेष या थोड़ी सी भी शिकायत है तो वो संबंध ठीक नहीं हो सकता है। हाँ जी, नहीं मतलब बोलना ही पड़ेगा ऐसे कि आप आओ आओ ऐसे प्यार। अच्छा, सोच भी ऐसे सकते हैं? अच्छा, जो चीज सपोज आप कुछ मेरे सामने कोई गलत चीज कर रहे हो, अब मैं आपको ये बोलूं आपको बुरा लगेगा कि मुझे किसी के बारे में भी गलत बोलना, मुझे लगेगा कि मैं इनको ये बोल दूंगी ना तो वो बुरा मान जाएंगे, नहीं बोलना छोड़ दो। तो जब बोलने से बुरा लग सकता है, वो गलत है मेरा उनके लिए वो बोलना, तो सोचना भी तो गलत है ना, सोचना भी तो गलत है। तो जो परमात्मा कहते हैं कथनी और करनी एक समान, रिश्तों में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां कथनी करनी अलग है, वो रिश्तों में तो ईमानदारी ही नहीं है ना। मैं सोच कुछ और रही हूं आपके बारे में, बोल कुछ और रही हूं, मतलब मैं आपके साथ लॉयल नहीं हूं। आप बोल दें कि आज हमें बाहर जाना था लेकिन आप आ गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे जाएंगे। जीवन में अचानक अचानक बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो फिर हम इस जीवन को अच्छे से जी नहीं सकते। अचानक अचानक बातें आती है ना, तो जो बोल नहीं सकते वो सोचना भी नहीं चाहिए। कथनी करनी एक समान, तो इसीलिए हमारे रिश्ते सोच से बनते हैं। हम कहें हम तो उनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, बहुत अच्छा उनको प्यार से रखते हैं, हर चीज अच्छे से देते हैं, लेकिन यहां से ठीक नहीं है, यहां से तो तीर जा रहे हैं, तो वो रिश्ता ठीक नहीं हो सकता है। आप यहां से कुछ मत बोलो, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप मीठा ना बोलो, आप उनको कोई गिफ्ट ना दो, पर आप रोज उनको दिल से मन से दुआएं भेजना सिर्फ शुरू करो। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। एक समय आएगा वो रिश्ता ऐसे ब्यूटीफुल हो जाएगा क्योंकि आपके संकल्प उस आत्मा तक पहुंचते हैं, वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। बहुत अफेक्ट करता है हमारी सोच हमारे रिश्ते पर, लेकिन हम उस पर ध्यान देकर नहीं, हम बाहर की चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमें लगता है हम बड़ी बड़ी गिफ्ट देकर के वो रिश्ता ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बड़े बड़े गिफ्ट देकर अगर रिश्ता ठीक हो जाता आज, और वो भी हमारी साइकोलॉजी क्यों बनी है पता है, क्योंकि मीडिया से हम ये सारी चीजें उठा रहे हैं। आजकल तो एडवर्टाइज में भी क्या होता है, जो बीवी से करे प्यार वो इस कुकर लेने से कैसे करे इनकार। मतलब चीजों को इस प्रकार से, अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो आप इस ज्वेलरी से, ये ज्वेलर से ये ज्वेलरी उनको गिफ्ट कीजिए। मतलब प्यार का आधार हमने वो बाहर की चीजों को, गिफ्ट को, ये सब दिखा दिया। क्या ये है, क्या ये है, नहीं है। प्यार का आधार, संबंध का आधार हमारी उनके प्रति जो भावना है, वो सोच है, वो है। फिर वो आत्मा मेरे साथ है या वो आत्मा फिर विदेश बैठी है, लेकिन मेरी उस आत्मा के प्रति क्या सोच है वो हमारा रिश्ता तय करती है। और सामने वाली आत्मा क्या भी कर रही है उससे वो रिश्ता, हम उस रिश्ते को ठीक कर सकते सिर्फ अपनी सोच से, अपनी भावना से, अपनी संकल्प शक्ति से। कार्यकर्म फिलोसॉफी में आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा ये संबंधों का खेल, कि क्यों वो ऐसा हमारे साथ करते हैं। तो क्यों का क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे, वो उसका आंसर तो आपको सेशन में मिलेगा, परंतु मुझे उस संबंध को ठीक करने के लिए क्या करना है वो मेरा रोल है। मेरे किरदार को इतना श्रेष्ठ मुझे प्ले करना है कि जीवन में कभी भी ये अफसोस हमें ना रहे कि काश मैंने इसके साथ अच्छे से बात कर ली होती। कुछ महीनों पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, एक साथ कितने सारे चले गए, कि अचानक से लोग जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि जिनके साथ हम अभी रह रहे हैं, जिनके साथ अभी बैठे हैं, 5 मिनट के बाद वो हमारे साथ होंगे भी या नहीं। पता है, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हमें नहीं पता है कि वो हमारे साथ बैठे हैं वो कल होंगे भी या नहीं। संबंधों को मधुर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका परमात्मा एक लाइन में सिखाते हैं, अपना जीवन ऐसे जियो जैसे आपकी हर घड़ी अंतिम घड़ी चल रही है। अगर मुझे ये पता हो, अगर समझो आपको ऐसा बताया जाए कि 15 मिनट के बाद आपको शरीर छोड़ना है, परमात्मा खुद आकर आपको बोल दे कि 15 मिनट है आपके पास और उसके बाद आपको शरीर छोड़ना है, आप उस 15 मिनट में क्या करेंगे? श्रेष्ठ कर्म 15 मिनट में कैसे करेंगे? पूरा जीवन तो क्या नहीं, 15 मिनट में कैसे होगा? वो 15 मिनट, चलो आधा घंटा ले लो, 15 मिनट नहीं आधा घंटा, क्या करेंगे आप उतने समय में? आप क्या करना चाहेंगे उतने समय में? जान सबसे सॉरी बोलेंगे? क्यों क्यों सॉरी बोलेंगे? सब सेटल करके जाना है, कोई अफसोस ना रहे। तो वो चीज तो हम रोज भी तो कर सकते हैं, क्योंकि मौत तो पूछ के आएगी नहीं, आएगी आएगी नहीं आएगी ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब कोविड चल रहा था, एक परिवार की बात है, परिवार के अंदर सुबह सुबह लॉकडाउन चल रहा था, झगड़ा हो गया माँ और बेटे का, बहू की वजह से कोई झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इतना विशेष हो गया कि बेटे ने अपनी माँ को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो नहीं बोलने चाहिए, और माँ ने अपने बेटे को भी कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो नहीं बोलने चाहिए, और वो इतना विशेष हो गया कि दोनों सब अपने अपने कमरे में चले गए, बातचीत बंद कर दी और बात नहीं कर रहे। सुबह से शाम हो गई, शाम को जब उनका कोविड का रिपोर्ट आया, पूरे परिवार का टेस्ट कराया था, तो उसमें दोनों का पॉजिटिव आया, बेटे का भी पॉजिटिव आया, माँ का भी पॉजिटिव आया, बहू का नहीं आया, दोनों का पॉजिटिव आया। दोनों को सर्दी जुकाम था, दोनों को हॉस्पिटलाइज्ड किया, अलग अलग रूम में हॉस्पिटलाइज्ड किया, और अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं तो भी एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे। देह अभिमान अहंकार, ऐसा क्यों बोला मुझे, अरे अभी तो छोड़ो, अब तो बीमार हो, अभी तो एक दूसरे से बात करो। नहीं, अहंकार जब रिश्तों से बड़ा हो जाता है, ये पराकाष्ठा है। और फिर 3, 4, 5, 6 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, बेटे के पास न्यूज आई कि मम्मी ने शरीर छोड़ दिया है। आज वो बेटा बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करने वाला, बहुत अच्छे से चलने वाला, आज डिप्रेशन के 4th स्टेज पर है। कारण सिर्फ एक, अब उसको ये अफसोस हो रहा है कि काश मैंने अपनी माँ से एक बार प्यार से बात कर ली होती। वो काश हमें चाहिए अपने जीवन में? वो काश हमें अपने जीवन में चाहिए? नहीं। इसलिए हमें कैसे जीवन जीना है? जैसे हमारी हर घड़ी, हमारी हर घड़ी, एक साथ बोलो, अंतिम घड़ी है। आज भरोसा है जीवन का? छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, बताओ 25 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, नहीं पता है कब ये शरीर छोड़ना है, सामने वाला कब छोड़ देगा हमें नहीं मालूम है। तो हर आत्मा के साथ वैसा व्यवहार करो कि बाद में अगर वो चला भी जाए ना, तो हमें ये अफसोस ना हो कि हमारी तरफ से कभी भी इस आत्मा को दुख पहुंचा है। बस ये छोटी सी सेवा है, सबसे श्रेष्ठ सेवा जो आज हम कर सकते हैं वो यही है कि हर आत्मा को सुख दे, संबंध ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। सुख देने का लक्ष्य रखें सुबह से शाम तक। कुछ समय पहले एक बहन हमारे साथ जो पढ़ाई करती थी, उन्होंने शरीर छोड़ा, सुसाइड किया होगा। तो हमने पूछा उनके रिलेटिव से कि रीजन क्या था, तो उन्होंने कहा, माँ बाप से पूछा होगा कि क्या रीजन था, तो माँ बाप ने बोला कि हमें पता ही नहीं क्यों किया। और वो ऐसी थी कि वो हमेशा हंसती रहती थी। मम्मी पापा को पता ही नहीं था कि वो क्यों करके गई ऐसा। आज बच्चे ऐसे स्टेप्स क्यों ले रहे हैं? आज हमारे परिवार के लोग हमसे आकर कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं, क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं? वो क्यों अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, न जीने का फैसला लेना पड़ रहा है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैं कहने भी जाऊंगी तो वो समझेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो छोटी सी बात करें, हम अपने स्वभाव को इतना सरल बना दें, हर आत्मा की यात्रा को और संस्कार को स्वीकार करें, वो जैसे हैं वैसा उनको एक्सेप्ट करें, और जब भी वो कुछ सुनाए बहुत रिस्पेक्टफुली सुन करके उनको प्रत्युत्तर दे, तो ही संबंध ठीक रह सकते। नहीं तो आजकल जिस प्रकार से दुनिया जिस दिशा में जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को भी नहीं समझ रहे हैं, इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे अपने संस्कारों को ठीक करना है कि कोई भी रिश्ता जब गड़बड़ चल रहा है उसमें मैं अपने संस्कार को परिवर्तन करते हुए मैं कितना उस आत्मा को सुख दे सकती हूं। अगर सामने वाला बीमार है, मेरे साथ चलने वाला व्यक्ति बार बार गुस्सा कर रहा है, धोखा दे रहा है, मतलब वो बीमार है, तो बीमार पर रहम आना चाहिए या उसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए? रहम आना चाहिए ना। तो रहम मतलब शक्ति देना। आपके घर में किसी का फ्रैक्चर हो गया हो तो आप उसकी कितनी टेक केयर करेंगे? वो खड़ा नहीं हो सकता, आप उसको खाना भी देंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे भी, उनको दवाई भी देंगे, हर चीज करेंगे ना। तो फिजिकल इलनेस उनकी दिखती है, तो यहां की क्यों नहीं दिखती है हमें कि वो आत्मा परेशान है, वो खुद दुखी है इसलिए हमें दुख दे रही हैं, वो इसीलिए दे रही हैं क्योंकि वो खुद अशांत है। पर मेरा काम है उनको शक्ति देना, वो बीमार है उनको उठाना, पर वो शक्ति मैं तभी दे पाऊंगी जब मैं खुद शक्तिशाली होंगी। अगर मेरे अंदर शक्ति नहीं है तो फिर सारे एक साथ नीचे गिरेंगे और वो रिश्ते कैसे हो जाएंगे फिर? और शक्ति संपन्न बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका परमात्मा राजयोग की विधि सिखाते हैं, जो आप रोज थोड़ा 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 करके सीख रहे हैं। राजयोग मतलब राजा बनना। किसका राजा? अपनी इन कर्मेंद्रियों का राजा बनना। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ी फैक्ट्री चला सकता है, अपने हाथ के नीचे 100 लोगों को चला सकता है, लेकिन कह देता है अरे आज मेरे मुख से ये बात निकल गई, आई एम वेरी सॉरी, अपने मुख को नहीं चला सकता, तो काहे का राजा, काहे का मालिक, राइट? तो राजयोग हमें अपनी इंद्रियों का मालिक बनाता है। आत्मा शक्ति संपन्न बनती है, देने की भावना शुरू होती है, क्योंकि आप संपन्न होते जाएंगे तो आपको कहीं और से चाहिएगा नहीं, आप सिर्फ देंगे, और जहां देना शुरू होता है वहां तो संबंध और ही ब्यूटीफुल होता जाता है। एक स्टोरी सुनाती हूं। दो पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी ए पड़ोसी बी। पड़ोसी बी का काम है रोज अपने घर का कचरा निकाल करके पड़ोसी ए के आंगन में फेंक देना। इसका नेचर ही ऐसा है कि अपने घर का सारा कचरा ऐसे करके उसके आंगन में डाल देता है। और पड़ोसी ए जो है ना, वो कभी कोई शिकायत नहीं करता। वो क्या करता है, उसने डाला वो साफ कर देता है, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी उसको शिकायत नहीं करता, कभी चिल्लाता नहीं है, वो डालता रहता है, ये साफ करता रहता है, ये रोज का है। अब समर की सीजन आती है तो ये जो पड़ोसी ए है ना, उसके आंगन में एक बहुत सुंदर आम का वृक्ष है, उसमें बहुत रसीले आम आए थे। तो शाम के समय वो आम तोड़ तोड़ के अपने टोकरी में रख रहा था, और ये सीन पड़ोसी बी देख रहा था। फिर सुबह होती है तो जब पड़ोसी बी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वहां पे एक बहुत सुंदर सी टोकरी में रसीले आम रखे होते हैं। तो उसको तुरंत याद आ जाता है, ये तो वही है जो वो कल शाम को अपने आंगन से तोड़ रहा था। उसको बहुत गिल्ट फील होती है, उसको ऐसा फील होता है कि मैं रोज इसके साथ कितना गलत करता हूं, अपने घर का कचरा फेंक देता हूँ, उसको परेशान करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी कभी मेरे से गलत व्यवहार नहीं करता, उल्टा अपने घर का आम मेरे यहाँ पे रख के गया है। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लगी, तो उसको लगा मुझे सॉरी बोलना चाहिए जाके। वो जाता है उसके पास जाकर सॉरी बोलने और कहता है आप बहुत महान हो, आपको मैंने इतना परेशान किया फिर भी आप मेरे साथ इतने प्यार से बात कर, मतलब इतना प्यार भरा व्यवहार कर रहे हो। सच में आज के ज़माने में ऐसे लोग होते नहीं हैं। आई एम वेरी सॉरी, आप बहुत महान हो। तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं महान नहीं हूँ, बात यह है कि जिसके पास जो होगा वही देगा ना। आपके पास कचरा है तो आप कचरा दे रहे हो, मेरे पास अच्छी चीज है तो मैं। तो अगर कोई भी संबंध में कोई हमें धोखा दे रहा है, दुख दे रहा है, नफरत कर रहा है, तो आप समझो उसके बेचारे के कटोरे में कुछ अच्छी चीज है ही नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे कटोरे से अच्छी अच्छी चीजें जाकर उसके कटोरे में रखनी चाहिए। हम उनका देखकर हमारा कटोरा फेंक के खाली कर देते हैं, उसके कटोरे में पत्थर है तो मैं भी पत्थर ना। उनका व्यवहार देखकर हम अपने व्यवहार को नहीं बदल सकते हैं। परमात्मा के बच्चे हैं, फरिश्ते हैं, संतान हैं, हम अपने स्वमान से ऐसे हो जाते हैं, अपने स्वमान पर स्थित होकर के व्यवहार करना शुरू करें। तो हम सबके जीवन में एक तो ऐसा होगा ही जिसके साथ रिलेशन थोड़ा सा ऐसा होगा। तो अभी हम जब लास्ट में 5 मिनट योग करेंगे ना, मेडिटेशन करेंगे, उस रिश्ते को अपने सामने लेकर आना, उस आत्मा को अपने सामने लेकर आना। हो सकता है उस आत्मा ने आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग की हो, किसी भी लेवल की हो, इट्स ओके, और वो किसी भी कर्म का हमारे साथ चुक तो करने आया हो, लेकिन अभी मुझे उस रिश्ते को ठीक करना है। क्योंकि अगर मैं उन बातों को यहां पकड़ के रखूंगी तो मुझे आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बातों को पकड़ने से आत्मा भारी होती है या खुश होती है? और हम कितनी सारी पुरानी बातें पकड़ के बैठे हुए हैं, कितनी सारे सालों की बातें, बचपन में किसी ने हमें मारा होगा ना, वो भी आज तक नहीं भूले हैं। तो वो सारी बातें जो पकड़ के रखी है ना, उसको रिलीज कीजिए। आप जिस स्थान पे आए हो ना, ये स्थान है रिलीज करने का। आप चिट्ठी लिखे भगवान को, ये चीज हुई थी इस आत्मा के साथ, आज मैं उस आत्मा को माफ करती हूं, रिलीज। पूरा लिस्ट निकालिए, जिस जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी इतना इतना था, चाहे गलती उनकी थी चाहे गलती मेरी थी, पर उस संबंध की गांठ को आज इस समय यहां जो आए हो सब सॉल्व करके जाइए। और ये बहुत इजी है, खेल यहां का है, आप यहां पकड़ के रखे हुए हो। जैसे यहां से रिलीज करोगे ना, आपके मन से उस आत्मा के लिए जैसे दुआएं, शुभ भावना बहना शुरू होगी, ऑटोमेटिकली उस आत्मा की भी भावना, उस आत्मा का आपके प्रति जो भाव है बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यहां एक्सपेरिमेंट करके देखा है, कई लोगों के संबंध बिगड़ते हुए बचे हैं, कई कई लोगों के डिवोर्सेस होते हुए बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने संकल्प और अपनी सोच को बदलने से कैसा भी रिश्ता ठीक कर सकते हैं हम। सिर्फ एक नियम है, उनके व्यवहार को नहीं देखना है, वो क्या कर रहे हैं उसे हमें नहीं देखना है, सिर्फ मुझे अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी वाणी, अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन रखना है, तो हम उन संबंधों को अच्छे से निभा सकते हैं, माधुर्यता ला सकते हैं। ठीक है, सब सीधा होकर बैठेंगे। अब वो एक रिश्ता लेकर के आएंगे अपने सामने, जो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, जिनके साथ आपका बोलचाल बंद है, वो रिश्ता अपने सामने लेकर आओ। बात कितनी भी बड़ी हो सकती है, किसी भी लेवल की हो सकती है, लेकिन वो बात मेरे शारीरिक स्वास्थ्य, मेरे मानसिक स्वास्थ्य से बड़ी नहीं है। लाल लाइट करेंगे, उस रिश्ते को अपने सामने देखें, चाहे वो परिवार का है, चाहे वो आपके कर्म क्षेत्र का है, कोई भी है, वो आत्मा निर्दोष है। हम सिर्फ उनकी आज की जर्नी देख रहे हैं, इस जन्म की यात्रा को देख रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद दुखी है, वो खुद शक्तिहीन है, खाली है। वो अशांत है, लेकिन मैं इस रिश्ते में क्या कर रहा हूं? अपने किरदार को देखें, मुझे उनके तरह अपने संस्कार को नीचे नहीं गिरने देना है। याद करो हम कौन हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, फरिश्ते हैं हम भगवान के। वो अलग है हमसे, पर अपनी जगह सही है। हमारा कोई कर्म का हिसाब किताब है, वो चुप तो करने आए हैं। मैं आत्मा उनको माफ करती हूं। आज इसी समय पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाते हैं। उनको एक संकल्प भेजिए, आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे मन में आपके प्रति केवल और केवल शुभ भावना है। हम आपको माफ करते हैं, हम दुआएं देते हैं आपको। आप देखें उनका चेहरा, वो भी मुस्कुराकर आपको दुआएं दे रहे हैं। रिश्ता ठीक है, मधुर है। जो भी हुआ पास्ट, फुल स्टॉप। आज से एक नई शुरुआत है। मैं अपने परिवार को सुख, शक्ति, खुशी देने वाली आत्मा हूं। उनके व्यवहार से प्रभावित होकर कर्म करने वाली नहीं। मैं देने वाली दाता की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा के लिए शुभ भाव है। परमात्मा की शक्तियां आसमान से उतरकर मेरे अंदर आ रही है और मैं वो शक्ति उनकी तरफ प्रवाहित करती हूँ। हमारा संबंध बहुत सुंदर है। आज मन बुद्धि से सारा बोझ, पुरानी बातें जो पकड़ के रखी है, उसे समाप्त करते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ कीजिए और भूल जाए। डिलीट कीजिए उन बातों को। उनको जैसे हैं एक्सेप्ट करते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।